ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سی ابہم، غمگین ہو گیا، دل تنگ، ناگوار گزرا، برا لگا ان کو ان کا آنا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کچھ ہی طرح وہ ان کو بچا نہیں سکتے، ان مہمانوں کو اگر ان کو چھوڑ دیں تو وہ ویسے ہی ان کو پکڑ لیں گے، اگر مہمان بنا لیں تب بھی ان کے پاس کوئی زور تو تھا نہیں، ان کا ان کی یہاں پہ کنبا برادری نہیں تھی. لوط علیہ السلام یہ ایک وہ پیغمبر ہیں جو اپنی قوم، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ یعنی نسبی طور پہ ان کے رشتہ دار نہیں تھے، آپ کو پتہ نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، تو یہ قوم ان کی قوم نہیں تھی، یہ ان کی بیوی کی قوم تھی، انہوں نے وہاں پہ شادی کی تھی، مگر اصل ان کی یعنی بلڈ ریلیشن نہیں تھا، ان کی برادری نہیں تھی، تو ان کو یہ تھا میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے، میں کیسے بچاؤں گا. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہو گیا ان کا دل. اب وہ اپنے آپ کو چونکہ کمزور پا رہے ہیں تو ان کا دل تنگ ہو رہا ہے کہ اب ہوگا کیا. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، انہوں نے کنہوں نے؟ فرشتوں نے. پھر ان کو کہہ دیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنی پریشانی میں، اب یہ آئے بھی اتنی خوبصورت شکلوں میں تھے، خوبصورت شکلوں میں اللہ نے کیوں بھیجا؟ آخر وقت تک حجت تمام کرنے کے لیے، کہ آخر وقت تک نہیں بھی نہ وہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس وقت تو ٹھیک ہو گئے تھے، نہیں، اینڈ تک یہ اب ان کے لیے ٹیسٹ تھا، اللہ آزما لیتا ہے اسی چیز سے جو انسان کی کمزوری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ کیا آخر ٹائم تک، قوم کو کے خلاف آخر حجت تمام کرنے تک. انہوں نے پھر کہہ دیا، قالوا لا تخف ولا تحزن، آپ نہ ڈریں نہ غم کریں، انا منجوک و اہلک، ہم نجات دینے والے ہیں آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو بھی. گھر والوں میں کون تھا؟ لوط علیہ السلام کی بس بیٹیاں تھیں. الا امراتک کانت من الغابرین، سوائے تیری بیوی کے لیے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں. انا منزلون على اہل هذه القريه رجز من السماء بما كانوا يفسقون، پھر انہوں نے بتا دیا فرشتوں نے کہ ہم تو اتارنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، فسق وہ کھلم کھلا گناہ. تو ان کے اوپر کس لیے عذاب آیا؟ کیونکہ انہوں نے کھلم کھلا گناہ کیے، فسق میں مبتلا تھے. اب یہ باتیں نوٹ کرتے جائیں، پہلے بھی کیا آیا کہ ہم اس بستی کو اس لیے برباد کریں گے، اس لیے ہلاک کریں گے کہ یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں. اب بھی کیا آیا کہ ہم اس کے اوپر عذاب اس لیے بھیج رہے ہیں یہ نافرمانی کرنے والے. اسے نوٹ کرتے جائیں کہ کیا چیزیں ہیں جو عذاب کو دعوت دیتی ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور البتہ تحقیق چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک نشانی کھلی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے، جو سمجھدار لوگ ہوں گے نا وہ سمجھ جائیں گے، اس سے سبق لے لیں گے. سمجھدار وہی ہے جو کسی کو دیکھ کے سبق لے لیں، اور وہ نہ سمجھ ہے جو کہ اس چیز کا انتظار کرے کہ وہ چیز اب میرے اوپر ہی آئے گی، میرے ساتھ ہوگی تو پھر مجھے سمجھ آئے، وہ بالکل بے وقوف ہے. لیکن کسی کے اوپر کوئی چیز ہو رہی ہو اسی سے عبرت لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عبرت کی نشانی بنا دیا آج تک کے لیے، دیکھیں اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نشانی بنا دی ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ کئی قومیں تو ہے نا وائپ آؤٹ ہو چکی ہیں، ان کے کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی، ہمیں ایسے آثار بھی نہیں ملتے زمین میں ایسے ہیں کہ یعنی آج کھدائیاں کر کے کچھ جگہوں کو تو نکال لیا اور پتہ چل رہا ہے، بے شمار ایسی بستیاں نیچے چلی گئی ہوئی ہیں، کچھ پتہ نہیں. مگر اس کو اللہ نے ایسی نشانی بنایا کہ دنیا کو آج پتا ہے کہ اس ڈیڈ سی کے نیچے بستی ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیا انہوں نے. اللہ نے اس پہ پانی بھی چڑھا دیا، اتنا سخت بدبودار اس میں اس کو بنا دیا، اور یہ سب نشانی نہیں ہے کیا؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ دیکھنے کے باوجود انسان اس سے عبرت نہ لے؟ مشرکین مکہ تو وہاں سے گزرتے تھے، ان کے تجارتی قافلے दिन रात वहां से गुजरते थे, उनके आसार देखते थे, उनको पता था कि यहाँ पे तबाही हुई है, यहाँ पे ये ऐसे बस्ती को तबाह किया गया, तो फिर भी वो भी नहीं लेते थे इससे असर, और आज हम भी नहीं लेते इससे असर। आज हम भी ये जगह भी देखते हैं और भी तबाहशुदा बस्तियों को हम जानते भी हैं, उनके बारे में मालूमात भी आज सामने आ रही हैं, इतनी इंसान ने चीजों निकाल के और आसार कई डिस्कवर किए हैं कि कैसी कैसी इबरत की निशानियां जमीन के नीचे पड़ी हुई हैं, फिर भी इंसान इबरत नहीं लेता कि कैसे अल्लाह ताला तबाह कर देता उनको को जो फिस्को फजूर करते, जो खुल्लम खुला गुनाह करते। इतनी आज हमारे ऊपर भी बेहिसी तारी हो गई है कि हम भी कोई भी निशानी देख के नहीं हम इबरत लेते, यानी अपने सामने किसी की मौत देख लेना ना, ये भी एक निशानी है अल्लाह कि इंसान को अपनी मौत याद आ जाए, इंसान की दिलचस्पी दुनिया से थोड़ी देर कम तो हो जाए, मगर आज देखा गया कि तब भी लोग दुनियावी बातें करते चले जाते, तब भी लोग दुनिया की इसमें इतने मशगूल है, जरा देर के लिए उनसे ताजियत करेंगे, उसके बाद बैठ के वही खुशगप्पियां हो रही हैं। अब जाहिर है पूरा दिन उनके घर बैठना है, खाने का भी इंतजार है कि कब खाना देंगे तो फिर हम जाएंगे, तो अब थोड़ी देर तो उनके साथ ताजियत कर ली, ज्यादा देर तो हम गम में नहीं मुबतला रह सकते भाई, तो अब कपड़ों की बातें हो रही हैं, शॉपिंग की बातें हो रही हैं, सेल की बातें हो रही हैं, उधर की बातें हो रही हैं, तब भी यानी ऐसा नहीं होता कि हम इबरत ले लें। कभी किसी की जवान मौत देख के भी नहीं इबरत आती कि देखो ये जवान दुनिया से चला गया, पता नहीं किस वक्त मेरा वक्त आ जाए, इससे तो मैं ज्यादा उम्र में हूं, तो उम्र से तो कोई फर्क नहीं इसका मतलब पड़ता, किसी वक्त भी कोई जा सकता है, तो मैं अपनी जवानी पे ये ना सोचूं कि मैं भी पता नहीं मेरे बुढ़ापे में ही मौत आनी, मैं याद कर लूं अपने इस दिन को जब मैंने चले जाना है मेरे पास क्या है। कब्रिस्तान पहुंच के भी बाज दफा लोग कुछ भी ना इधर उधर दुनियावी बातें शुरू कर देते, लोग ताजियत के घरों में बैठ के नहीं उनको अपनी मौत याद आती। इमाम गजाली फरमाते हैं कि पहले वक्त में अगर किसी का इंतकाल हो जाता था तो जो लोग जो ताजियत करने के लिए जाता था वो पहचान नहीं सकता था कि मैयत के जो करीबी रिश्तेदार कौन से हैं, जो बाहर के हैं वो कौन से, यानी सारों पे गम तारी होता था, वो लोगों के दिल नरम थे उस वक्त पहले वक्त। अब तो बेहिसी ऐसी तारी हो गई है, बड़ी से बड़ी चीजें, मौत के घर देख लेते हैं, जनाजे देख लेते हैं अपने सामने, और अपने टीवी पे इतनी खबरें ऐसी ऐसी देख लेते हैं कि मेरा ख्याल पहले वक्तों में भी इतने लोगों ने ऐसी चीजें ना सुनी होंगी जो आज हम देख लेते हैं अपने सामने, उनकी तस्वीरें देख लेते हैं फिर भी कोई असर नहीं होता, खबरें हैं बस आगे पीछे कर लो, चैनल घुमा दो, ओहो बड़ा बुरा हुआ, चलो कुछ नहीं इबरत लेते। लेकिन ये अल्लाह ताला निशानियां देता है उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं, जिनको कोई समझ हो, इसका मतलब सिर्फ अकलमंद ही नसीहत लेते हैं, बाकी बेवकूफ है जो इनसे गुजर के चले जाते हैं, इनके अंदर अकल ही नहीं है, अकल वाला तो नसीहत लेगा, वो तो गौर व फिक्र करेगा, लेकिन असल मसला ये है कि बाज दफा लोगों की अकलें सिर्फ दुनिया के मामलात में चलती हैं, इस मामलात में चलती ही नहीं है। وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ اور امید رکھو آخرت کے دن کی یہ کیوں فرمایا امید رکھو آخرت کے دن کی اس لیے آخرت کو بھول جانا ہی تو انسان کو گناہوں پہ دلیر کر دیتا ہے گناہوں میں جا کے पड़ जाना और उसमें धंसे रहना और उसमें से ना निकलना ये क्यों होता है जब इंसान की नजर से आखरत ओझल हो जाती है आखरत याद नहीं रहती। भाई देखे ना आप खुद सोचें कि जिसको ये पता होगा कि मैंने अल्लाह के आगे खड़े होना है क्या ये क्यों ऐसा है क्यों मैं ऐसा करूं मुझे जवाबदेही करनी है वो तो उसको किसी वक्त तो ख्याल आ जाएगा अगर वो गुनाह कर भी बैठेगा तो फौरन उसका दिल डर जाएगा हाय देखो ये मैंने क्या कर दिया। ये नहीं कि उसे गुनाह नहीं होगा गुनाह उससे भी हो जाता है लेकिन उसको जल्दी एहसास हो जाता है वो दलेर नहीं होता गुनाहों पे वो ढीठ नहीं हो जाता गुनाहों पे वो एम्फसाइज नहीं करता गुनाहों पे। اللہ اکبر. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور نہ تم پھرو زمین میں مفسد بن کے, فسادی بن کے نہ پھرو, فساد نہ کرو. فساد کیا ہے چیز؟ فساد ایک حسی بھی فساد ہوتا ہے, ایک مانوی فساد بھی ہوتا ہے. یعنی انسان, ایک فساد تو یہ ہے نا کہ انسان ہے, چوری, ڈاکہ, قتل و غارت, یہ کرنا, یہ سب فساد کی باتیں ہیں, اس کو فساد ہی کہتے ہیں. فساد کیا چیز ہے؟ اصل میں اعتدال سے ہٹ جانا, ایک اعتدال کا راستہ ہے, اس سے ہٹ جانا, یہ فساد. تو اب یہ جو دنیا میں چوری, تباہی, انسانوں کو لوٹ کسوٹ کرنا, یہ سارے فساد کی شکلیں ہیں. ایک اخلاقی فساد بھی ہوتا ہے, مانوی فساد بھی ہوتا ہے. یعنی گناہ کے کام, حقوق اللہ کے بھی اور حقوق العباد میں کے معاملے میں, یہ اخلاقی فساد ہے. یعنی انسان لڑائیاں ڈلوا رہا ہے, کسی کو حق نہیں دے رہا, والدین کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں, چھوٹوں پہ ظلم ہو رہا ہے, گالم گلوچ ہو رہی ہے, ہاتھ اور زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہا, یہ اخلاقی فساد ہے. بعض دفعہ انسان سوچتا بھی نہیں ہے, بس ذرا سی وہ ایک, جس کو کہتے ہیں نا تیلی لگا دینا, تیلی لگا دیتا ہے اور کہتے نہیں میں کیا کرتی, میں تو کچھ کرتی ہی نہیں. حالانکہ وہ جو تیلی لگا دیتے ہیں نا, تیلی سمجھتے ہیں, میچ سٹک ہوتی ہے, وہ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد چپ کر کے خود بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں, یہ فساد نہیں ہے کیا؟ یہ بھی فساد ہے. لڑائیاں ڈلوا دینا یہ بھی فساد ہی کی قسم ہے. بیٹے کو کہہ دینا آج تو تیری بیگم سارا دن سو کے ہی نہیں اٹھی, 12 بجے اٹھتی ہے, پورا دن پتہ نہیں کہاں گئی رہتی ہے, نہ بچوں کو دیکھتی ہے, نہ کچھ کرتی ہے, بچوں کو نہ نہلاتی دھلاتی ہے, نہ اس کو بچوں کا کوئی ہوش ہے. ابھی تمہارے آنے پہ ہی اس نے تھوڑا کچھ صحیح ہوئی ہے, اس سے پہلے تو سارا دن یہ کر رہی تھی وہ کر رہی, بس اتنی سی تیلی لگانے کی دیر ہوتی ہے, آگ لگ جاتی ہے. اسی کو ادھر سے ادھر تمہیں پتا ہے, وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, اس نے تو یہ کہا. اچھا آگے آپ آگ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی پھوٹ پڑ جائے گی. یہ فساد کی قسمیں ہیں. دو لوگوں کو دیکھنا کہ یہ راضی خوشی بیٹھے ہیں, یہ میاں بیوی بھی بڑے خوش ہیں, یہ ماں بیٹا, یہ ماں بیٹی, یہ نند بھابھی, یہ ساس بہو بڑے خوش ہیں, تو پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع. آپ کس طرح سے ان کو, نہیں آپ کے سامنے تو بڑی بنتی ہے, پیچھے سے یہ اتنی نہیں ہے, جتنی اوپر ہے اتنی نیچے ہے. چلو فساد پہ ڈال دیا, آپ کے سامنے ایسی باتیں کرتی, ہمیں تو یہ کہہ رہی. یہ فساد کی قسمیں ہیں, فسادی مت بنو. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پیغمبروں نے منع فرمایا. ہم سوچتے ہیں ہم کسی کو قتل تو نہیں کر رہے, ہم کسی کو لوٹ تو نہیں رہے, جو زبان سے کر رہے ہوتے ہیں ہم, وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے نقصان ہیں. ان سے گھر برباد ہو جاتے ہیں, ان سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, رحم کے رشتے ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں. دوست کو مشورہ دے دینا, بیوی کو زیادہ ڈھیل نہ دینا, ہاتھ سے نکل جائے گی. عورتوں کو مشورہ دے دینا, تیرا میاں پتہ نہیں کدھر جاتا ہے, ہم نے تو اس کو وہاں پہ دیکھا تھا. دھیان رکھنا, یہ اسی طرح ان پہ کبھی اعتبار نہیں کر سکتے. نو آج ہی اس کو شک پڑ گیا میاں پہ. ٹھیک ہے نا, یہ ہم جب بول رہے ہوتے ہیں ہم سوچتے نہیں کہ ہم کہاں کہاں فساد کر رہے ہیں. زمین میں کرپشن نہ کرو, یہ کرپشن ہی ورڈ ہے فساد کے لیے. کرپشن صرف مال کی نہیں ہوتی, یہ سب کرپشن ہے. دوسروں کے ان کے حق نہ دینا, یہ کرپشن ہے, فساد ہے. فحاشی کو عام کرنا, مالی طور پہ لوگوں کے حقوق غصب کر لینا, تو کہاں کہاں فساد ہم کر رہے ہیں. اپنی ذات سے ہم دیکھیں, اپنے آپ کو ہم سوچیں, کدھر کدھر فساد کر رہے ہیں. ہماری زبانوں سے کدھر فساد ہو رہا ہے, ہمارے ہاتھوں سے کدھر فساد ہو رہا ہے, ہم کن کے حقوق نہیں ادا کر رہے. اللہ کا حق نہ دینا اور بندوں کا حق نہ دینا, سب فساد میں آ گئے. پانی ضائع کر رہے ہیں, بجلی ضائع کر رہے ہیں, یہ سب فساد ہے. درختوں کو کاٹنا یہ بھی فساد ہے. زمین پہ فساد کرنا, یہ زمین کے لیے آپ اس کا حق نہیں اس کو دے رہے. دوسروں کی زندگی حرام کر دینا اپنی زبان کی وجہ سے, کہ لوگ کہیں کہ کب یہ اٹھ جائے, دنیا سے جائے ہی, تو اس کی خواہش یہی ہے کہ دنیا سے جائے تو ہمیں چین آئے. کتنی انسان کی ایسی زندگی काबिल शर्म जिंदगी है कि कोई हमारी वजह से इतनी तकलीफ में हो इस दुनिया में कि वो ये उसकी चाहत हो जाए। ये किन लोगों की चाहत होती कि ये नफा मंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें बेहतरीन वो है जो सबसे ज्यादा नफा पहुंचाने वाला, नफा मंद बने लोगों के लिए, कि लोग दुआएं करें कि ये हमारे इर्द गिर्द रहे, लोग दुआएं करें आपकी लंबी उम्र के लिए, लोग दुआएं करें आपके साथ के लिए, लोगों को अच्छा लगे आपके साथ होना, आपका करीब होना, आप इतने फायदा मंद हैं दूसरों के लिए। ये नहीं है कि जिधर जाते हो उधर थोड़ी देर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हो। इसलाह करने वाले बने। तो इनका तो ये था, नाप तोल में कमी बेशी करते थे, उसमें ट्रेडिंग में करप्शन थी इनकी। तो ये इसका मतलब है कि ये भी फसाद, नाप तोल में कमी बेशी करना, बाजारों में ऊंच नीच कर देना, किसी चीज की ऐब ना बताना और उसको ऐसे ही बेच देना, और उसको ये लोगों को जाहिर कर कि ये बहुत अच्छी है, उसको अच्छी चीज ऊपर दे दी और नीचे गंदी दे के और उसको फारिग कर दिया। ये सारे फसाद हैं। जब भी आप दूसरों के हकूक मारेंगे ना, फसाद होगा। अल्लाह ताला हम सबको फसाद से महफूज रखे। फकज़्ज़बूहु, तो उन्होंने झुटला दिया। फअख़ज़तहुमुर रजफ़तु, तो पकड़ लिया उनको एक ज़लज़ले ने। फअसबहु फी दारिहिम जासिमीन, हो गए अपने घरों में घुटनों के बल गिरने वाले। उनको उठने की भी नहीं यानी टाइम मिला, मौका मिला, उठ भी नहीं सके उस जगह से, वहीं के वहीं जहां थे वहीं के वहीं घुटनों के बल गिर गए। वह आद व समूद, और आद को और समूद को। वक़त तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम, और तहकीक वाज़े हो गए तुम्हारे लिए उनके मसाकिन, उनके पास से जो गुजरते थे। आद जो थे अकाब वाले थे, उनकी बस्ती यमन के करीब थी, ये भी करीब ही था, ये यमन की तरफ को जाते होते थे ट्रेडिंग के लिए, और इनके पास कहानियां थी इन लोगों की। और समूद भी, वो हिजर की तरफ जो हिजाज के शुमाल में है, आजकल तो इसे मदाइने सालेह कहा जाता है, तो उन पे भी देखे अजाब आया। तो इनके घरों के पास से तुम गुजरते हो, इबरत की निशानियां तुम्हारे लिए, कैसे ये घर वीरानी की तस्वीर बने हुए। कैसे हो सकता है कि इंसान इनके करीब से गुजरे और कभी सोचे ही ना, जबकि सब कुछ सामने खुला पड़ा, इतनी वीरानी है वहां पे। उनकी पिक्चर्स भी देखें तो एक वीरानी की तस्वीर है वो, कभी सोच नहीं आती कि ये इतने आलीशान मकानात बना के कहां चले गए। وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, शैतान ने उनके आमाल इनके लिए मुजय्यन कर दिए, अट्रैक्टिव बना दिए, ब्यूटिफाई कर दिए इनके लिए इनके आमाल। यानी इतने उनको गुनाह अच्छे लगने लगे, उनको लगता था कि यही सबसे अच्छा काम है, उनको जरूरत ही नहीं महसूस होती थी कि वो अल्लाह की तरफ जाए। शैतान ने ऐसा धोखा दिया, ये भी शैतान की एक इतनी बड़ी चाल होती है। इसीलिए जो गुनाह है ना, जब तक दिल के अंदर चुभता रहे, उसकी कसक रहे, और इंसान को यह एहसास रहे ये गुनाह है, मैंने ये गुनाह कर दिया, मुझसे ये गुनाह हो गया, और वो उसके ऊपर तौबा करता रहे, फिर गुनाह हो जाए, फिर तौबा कर दे, तब भी अल्लाह की तरफ से माफी है। लेकिन अगर इंसान गुनाह को, बुराई को भलाई जानने लगे, उसको लगे ये बुराई नहीं है, ये कारनामा है मेरा, ये बड़ी अच्छी बात है, और वो खुश हो के लोगों को बताए मजलिसों में बैठ के, मैंने तो ये किया, मैंने ऐसा किया। बहुत सारे गुनाह हैं, आप भी सुनते होंगे, लोग कितने शौक से बताते हैं और कितने धड़ल्ले से बताते हैं, डरते भी नहीं कि ये गलत काम है, और फिर उसके ऊपर ढीठ है, और उसको ऐसे बताते हैं कि जैसे ये को मैंने बहुत ही अच्छा काम कर दिया। बाज दफा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, बाज दफा आप कई लोगों को सुनते, वो कहते हैं हमारी माशाल्लाह एक नई फिल्म आ रही है, वो भी उसके ऊपर भी माशाल्लाह कह रहे हैं, ऐसे बहुत ही खूबसूरत कारनामा सर अंजाम दे दिया। बुराई भी भलाई लग रही, नाफरमानी भी अल्लाह की ऐसे लगती है कि उसके ऊपर भी शौक से गिरे चले जाते हैं, और वो भी मॉडर्निज्म है, वो भी अप टू डेट होना है, वो भी बड़ा यानी सोसाइटी के अंदर बड़ी एक बड़ी चीज समझी जाती है उस काम को। तो ये समझ लें कि फिर शैतान ने मुजय्यन कर दिया, और ये शैतान का की इतनी बड़ी चाल होती है, क्योंकि जब इंसान को बुराई भलाई लगने लगे ना, और अच्छी लगने लगे, कुफर या नाफरमानी के काम में मजा आ रहा है और वो बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, तो समझ लें कि शैतान ने ब्यूटीफाई कर दिया। जब शर्म महसूस नहीं ना हो रही उसको बताने में और उसको एक्सेप्ट करने में, तो बस फिर समझ लें ब्यूटीफाई हो गया। और जब शैतान ये करने में कामयाब हो जाता है तो फिर इंसान तौबा भी नहीं करता। जाहिर है ब्यूटीफुल अमल पे कौन तौबा करेगा, ये तो अच्छा काम है, इसमें तौबा की क्या बात है, वो तौबा से भी महरूम हो जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, यानी उसको ऐसी शक्ल दे देता है उसको। देखें रैपिंग आजकल कितने सारे कामों की रैपिंग इतने खूबसूरत रैपिंग पेपर्स में की गई है कि वो गुना अट्रैक्टिव हो गए लोगों के लिए, लोगों को नहीं लगता कि ये कोई बुराई है। कितने ही काम है हमारे माशरे में, और अगर कोई कह दे कि ये जो है ये गलत है ये नहीं करना चाहिए ऐसे, तो कहते हैं ये क्या दकियानूसी, आप लोगों तो पता नहीं क्या, सारे मजे खत्म कर दो और बस अल्लाह अल्लाह करो, आप लोगों को तो बस ये है। इंसान को रोकने वाला भी बुरा लगने लगता है, वो अमल नहीं बुरा लगता लेकिन रोकने वाला बुरा लगता है। तो कतादा फरमाते हैं कि वो लोग ना अपने मजहब को छोड़ने को और गुमराह होने को पसंद करते थे और खुद को सही रास्ते पर समझते थे। देखें आप सोचें कि जो गुमराही है उसको पसंद करते थे, आज तक तो ये सिलसिला चल रहा है, शैतान ने तो ऐसा धोखा आज तक दिया है। समूद को जैसे धोखा दे दिया, उन्होंने सोचा कि दुनिया की तामीर ही हम करते रहें तो हम बस सबसे ऊंचे हो गए और अब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब कोई हमारा कुछ कर ही नहीं सकता। फसद्दहुम अन सबील, तो उसने रोक दिया उनको रास्ते से, अल्लाह की तरफ आने का रास्ता रोक दिया इसी तरह गुनाहों में डाल के। हम समझते भी नहीं है फिर शैतान की चाल को, हम इग्नोर कर देते हैं इस बात को कि ये शैतान ने मुजयन किया। आज को जो जो फैशन चल रहे हैं, आज जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, आज जो 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 भी चीजें माशरों में बुराई की हैं, जो कुरान में सरीहन उनको क्लियरली उनको मुझसे मना किया गया, उन्हीं चीजों को देख के हम उनको एनवी करते हैं, उन पे खुश होते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं तो उस पे खुश होते हैं। ये इमरात लूत वाले बात नहीं है क्या, देख के खुश होते हैं उनके ऊपर और उनको एनकरेज तो ना सही मगर उनको हम ये कहते हैं कि हम उनको एक्सेप्ट करते हैं कि ये मतलब कोई बुराई नहीं है, ये कोई मसला नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इमरात लूत वाला काम नहीं है क्या, ये बुरी चीज है, उसको देख भी रहे हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसको एंडोर्स करते हैं कि नहीं कुछ इन्हें क्या प्रॉब्लम है। खंडरात तुम्हें पैगाम नहीं देते, ये होश नहीं आता कि देखो जो अल्लाह के ना फरमान थे उन्होंने भी शैतान ने उनके लिए मुजयन कर दिया था, देखो उनके आज हाल क्या। अस्तग़फिरुल्लाह, वकानु मुस्तबसिरीन, और सबसे बड़ी बात ये कि वो होश रखने वाले थे, ऐसा नहीं था कि वो कोई बेवकूफ से लोग थे, बेचारों को कहां अकल थी, अकल ही उनकी कम थी, उनको समझ ही नहीं आई, पैगंबरों की बात ही नहीं समझ आई, नहीं बड़े अच्छे होशमंद थे, अच्छे भले अच्छे बुरे की उनको तमीज थी, उनको पता था, उनको पैगंबरों की बात समझ आई भी थी, पहचानते थे हक बातिल को, मगर अमल नहीं करना चाहते थे, नहीं चाहते थे उन चीजों से निकलना, वो यही रखना चाहते थे जो उनकी डगर थी। अल्लाह, इससे ज्यादा मैं सोचती हूँ खुली आयात क्या होंगी हमारे लिए, ऐसे लगता है अपनी कहानियां पढ़ रहे, शैतान ने अमाल मुजयन किए, शैतान ने रोक दिया अल्लाह के रास्ते, वही अमाल इतने खूबसूरत लगने लगते हैं, वही शॉपिंग्स, वही दुनिया में बस इतनी गुम हो जाना, वही गफलतें, वही मजलिसें कि बिल्कुल अल्लाह के रास्ते से इतना दूर कर दिया कि अब पता है हाँ ये ठीक है, हाँ बड़ा अल्लाह का रास्ता बड़ा अच्छा है, वो होगा सब कुछ होगा, लेकिन हमने नहीं आना इस तरफ। तो वो लोग बड़े होशियार लोग थे, ऐसे नहीं था पागल थोड़ी थे जिन्होंने ये इतनी बड़ी बड़ी तामीरें कर ली। आप आज भी उनको खड़े देखते हैं, हजारों हजारों साल गुजर गए आज भी वो खड़ी हुई, तो वो क्या आपका मतलब है कि उनको कोई अकल नहीं थी। हम तो ये सोचने लगते हैं वो कहां हजारों साल पहले के लोग, वो तो पता नहीं उनकी कोई समझ थी नहीं, असल अकलें तो हमें अब आई है 21st सेंचुरी, हमें असल अकल है, उनको कहां अकल थी। तो बात यह है कि उनको बड़ी अकलें थी, उनको बड़ी समझ थी। कुरान कहता है कि कानू मुस्तबसिरीन, बड़ी उनकी बसीरत थी, बातनी बसीरत थी, उनको शऊर था, उनको समझ थी, उनको हक क्या है पता चल गया हुआ था उनको। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, शऊर के बावजूद देखो वही करते चले गए। असल में बात होती ना, यालमूना ज़ाहिरा मिनल हयाती दुनिया वहुम अनिल आखिरती गाफिलून। सूरह रूम में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, दुनिया की जिंदगी का जाहिरी तो बड़ा पता होता है उनको, लेकिन आखिरत से गाफिल होते हैं। यही इनका हाल था, यही आज का हाल है। जाहिर दुनिया की जिंदगी का जाहिर पूछ लो तो हर बात पता है, हर कुकिंग की रेसिपी पता है, हर फैशन का पता है, हर बाहर के चीजों का पता है, कहाँ से कौन सी चीज अच्छी मिलती है, किस चीज के क्या फायदे हैं। हेल्थ के बारे में पूछ लो तो सब पता है, बिजनेस का पूछ लो तो सब पता है, पॉलिटिक्स का पूछ लो तो हर चीज मालूम है। फिर मतलब कौन सा शेड कहाँ मिलता है, कौन से ब्रांड में मिलता है, कौन सा मेकअप किधर कैसे लगाते हैं, क्या करना है, वो सब चीजें पता है। यही नहीं समझ, और चीजों की कोई समझ ही नहीं, होश मंद है मगर फिर वही बात है सूरह रूम वाले की, जाहिर मिनल हयात दुनिया, दुनिया के जाहिरी का बड़ा इल्म है। और देख लो कारून व फिरौन व हामान, तो इनको भी देख लो, कितने बड़े बड़े माल और दौलत के सिंबल्स, दुनियावी जाह और हकूमत के सिंबल्स, यानी जिनकी मिसाल दी जाती है आज तक। दुनिया की कामयाबी, दुनिया की हद तक जो कामयाबी होती है ना, जिसको हम कामयाबी कहते हैं, उसका सिंबल है कारून और फिरौन और हामान। तो कारून फिरौन का ही समझ लें, उसकी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने वाला उसका मिनिस्टर था। तो कारून का आपने पहले पढ़ा, तौरात का भी आलिम था, कारी था। लेकिन देखें ये जो दुनिया के जाहिर है, इतनी इनकी खुशहाली और इतना दौलत थी तो बेवकूफ थोड़ी थे, मुस्तबसिरीन थे ये, इसकी एक मिसाल है ये। लेकिन बस दुनियावी हद तक थे, दुनिया का तो सब कुछ इनको पता था, हुकूमतें कैसे चलानी है, कैसे कोई बगावत ना हो जाए, उसके लिए कुचल डालने के लिए बच्चों को ज़िबा कर देना, ये भी बड़ा पता था। कैसे किस चीज का क्या करना है, इतनी अंपायर चला रहा था, लोगों को कंट्रोल में रखा हुआ था, दबा के रखा हुआ था, अकलें थी तो किया हुआ था ना। लेकिन अकलें बस यहीं के लिए थी, ये बिग नेम्स है ना दुनिया के, जिनको आज भी लोग जानते हैं। तो उस एक जमाना था इनके यस कहने से बच्चे ज़िबा हो जाते थे, फिर क्या हुआ, बुझ गए, खत्म हो गए। तो बड़े समझदार थे मगर उनकी समझदारी आखिरत के मामले में जीरो थी। अब कहाँ है आग में, दुनियावी कामयाबियों के ये जो आखिरत से गाफिल रहे और दुनिया की कामयाबियों को समझता रहे हर चीज, वो उनके ये अंजाम है। शैतान ने उनके आमाल कैसे मुजयन कर दिए थे, उनको भुला ही दिया था कभी वापस जाना। वलकद जाअहुम मूसा बिल बय्यिनात, और अलबत्ता तहकीक आए उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम रोशन दलाइल के साथ। फस्तकबरु फिल अर्द वमा कानू सादिकीन, उन्होंने जमीन में तकब्बुर किया, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने अल्लाह की बात को पसंद नहीं किया। और जो तकब्बुर करता है ना, उनको अपनी अकल ज्यादा थी कि हम ज्यादा बेहतर समझते हैं, अल्लाह की आयात को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अपने आप को बड़ी चीज समझा। अमा कानू साबिकीन, तो फिर क्या बच गए हमसे, क्या फिर आगे निकल गए हमसे, हरा लिया हमें उन्होंने, हाँ भाग निकले हमसे कहीं, अल्लाह की गिरफ्त से बच गए क्या? नहीं, वो सबकत ले जाने वालों में से नहीं थे, वो हमें हरा नहीं सकते थे, वो हमसे भाग नहीं सकते थे आगे। एक ही फिर गोता आया था फिरौन को, तो फिर देखे हाल क्या हो गया था उसका, सारी अकड़ खत्म हो गई। तो याद रखें, किसी इंसान की कितनी भी बड़ी दुनिया की कामयाबियां तो वो बस दुनिया की हद तक ही हैं, वो यहां के लिए ही है बस। आखरत में ये नहीं देखा जाएगा किसकी कामयाबी कितनी थी, वहां के मुताबिक तो ये जीरो है जीरो, जब तक वो अपनी आखरत के लिए कुछ ना बनाए। कितनी आप किसी की बिजनेस एम्पायर्स देख लें, आलीशान घर देख लें, बड़ी उठान देख लें, वो क्या है, सिर्फ चंद दिन की। ये सारी बड़ी बड़ी कौमों के वाकयात बताए जा रहे हैं, ये बिग नेम्स थे इस दुनिया के, बिग नेम्स देखो कैसे रुल गए, कैसे अल्लाह ताला ने इनको खत्म कर दिया। फरमाया फकुलन अखदना भी दम्बी ही, सब के सब को हमने उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा। दिस इज द मेन थिंग जिसके ऊपर आप, मैं आपको चाह रही हूं, जो पीछे से मैंने आपको कहा गौर करें इस बात को कि वो अजाब क्यों लेकर आए। वो जालिम थे, वो फासिक थे, सबको, इन सब को कलेक्टिवली सबकी बात की गई। ये जो बिग नेम्स है ना दुनिया के एतबार से, बिग नेम्स आद समूद आज तक उनके देख रहे, कारून फिरौन हामान कौम शुएब कौम लूत, बिग नेम्स, इन सब को पकड़ लिया उनके गुनाहों की वजह से, ईच वन ऑफ देम, कोई भी नहीं बचा। तो मेन बात फिर क्या है, मेन चीज क्या है, असल हकीकत क्या है कि गुनाहों से बचो। गुनाह लेकर आते हैं इन अजाबों को, गुनाह लेकर आते हैं उन नाकामियों को जिनके बाद फिर कोई कामयाबी नहीं मिलनी। गुनाह दावत देते हैं सजाओं को। गुनाहों से बचो, चाहे तुम कितने ही बड़े दुनिया में तरक्की कर गए, अगर तुम गुनाहों में हो तो एंड नाकामी है। ये तुम्हारी एम्पायर्स देख के कोई मुतासिर नहीं होगा, ये तुम्हारी ये बड़ी बड़ी ताकतें, ये बड़ी बड़ी महल्लात, ये हकूमतें, ये ओहदे देख के कोई नहीं मुतासिर होगा अगर तुम गुनाहों में पड़े रहे तो। हाँ, इंसान गुनाहों से निकल के एक पाक साफ और नेकी की जिंदगी गुजार रहा हो तो फिर ना दौलत उसके लिए कोई मसला, फिर दाऊद अलैहि सलाम के पास भी था, बादशाही थी, सुलेमान अलैहि सलाम कितने बड़े बादशाह थे। तो असल चीज फिर क्या, असल चीज ये दौलतें और ये चीजें नहीं, असल चीज ये कि इंसान गुनाहों से बचे, अल्लाह की नाफरमानी से बचे। तो गुनाह इंसान के लिए क्या मुसीबतें लाते हैं, देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर जरूर बात करना चाहती हूँ आज। और ये भी गौर करिएगा, जब हम ये सोचते हैं ना, हाँ ये वाइप आउट हो गए, वाइप आउट हो गए, और हमें तो ना पता नहीं कुछ भी नहीं, हमें मसला, क्योंकि हमारे लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की भी, बेशक दुआ की भी है, आज वाइप आउट होने का तो नहीं है कुछ भी, ये कि उम्मत मुस्लिमा पूरी अस्तग़फिरुल्लाह के वाइप आउट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन बहरहाल गुनाहों की जो नहुसत है, गुनाहों के जो अजाब है, वक्तन फवक्तन हमें दिखाए जाते हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते। दुनिया और आखिरत की कोई बुराई और कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका सबब गुनाह ना हो, हर बुराई और बीमारी का सबब ये। आप गौर करें, गौर करें जरा आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के ऊपर, कि जन्नत जैसी नेमत, ऐसी जगह जो है, उससे दुनिया जैसी जगह की तरफ निकाल दिए गए, क्यों, एक नाफरमानी की वजह से। इबलीस को मलाइका से किस चीज ने जलील करके बाहर निकाल दिया था और लानत का मुस्तहिक बनाया, गुनाह की वजह से। गुनाह वो बदसूरती है जो इंसान को का दर्जा किधर से किधर पहुंचा देती है, किधर वो मलाइका के अंदर और किधर वो मलाऊन में आ गया। गुनाह की वजह से, गुनाहों की वजह से गैर कौमों को मुसल्लत कर दिया जाता है, गुनाहों की वजह से इंसानों को बंदर बना दिया गया था, क्या गुनाहों की वजह से। आगे ये देखें, अभी हम ये आयत पूरी कर लेते हैं फिर मैं और आपको बताते हैं। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर हमने पत्थरों की बारिश कर दी गुनाहों की वजह से। वमिनहुम मन अखदतहु सैहा, और इनमें से ऐसे हैं जिनको हमने पकड़ लिया धमाके से गुनाहों की वजह से। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको धसा दिया जमीन में, किस वजह से, गुनाहों की वजह से। वमिनहुम मन अगरकना, और कुछ ऐसे हैं जिनको गर्क कर दिया गुनाहों की वजह से। ये सारी तबाहियां क्यों आई, गुनाहों की वजह से। गुनाहों की वजह से बड़ी बड़ी कौमें पकड़ी गईं और वो अल्लाह को हरा नहीं सकी, उनके महल्लात ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। ये मुख्तलिफ किस्में अजाबों की जो बताई गई हैं, हासिब आद के ऊपर आई और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर भी यही अजाब आया था, और फिर सईहा समूद के ऊपर चिंगाड़ का अजाब आया, फिर जमीन में धंसा दिया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर, तो ये भी अजाब आया था, दो तीन तरह के अजाब आए थे, और कारून को भी धंसाया गया, इनमें जिनको गर्क कर दिया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क कर दिया, फिरौन को गर्क कर दिया गया। देखा आपने कि इंसान फिर भाग के कहां जा सकता है, क्योंकि सब तरफ आप घिरे हुए हैं अल्लाह के लश्करों के अंदर। ये अल्लाह के लश्कर हैं, ये अल्लाह की मानते हैं, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो हवाएं हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पानी हो, जिसको अल्लाह हुक्म देगा वो अल्लाह के हुक्म का ताबे है, वो हमारी तरह नहीं है। पानी उसके हुक्म का ताबे, आसमान उसके हुक्म का ताबे, जमीन अगर आज हमें धंसाती नहीं है तो इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है कि नहीं धंसाना, उसने रोका हुआ है। आज समुंदर हमारे पर चढ़ नहीं दौड़ते इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है कि यहीं थम जाओ। आज कोई चीख हमारे कलेजे क्यों नहीं फाड़ देती जबकि वही काम हो रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला हुक्म दे दे तो सब चीजें अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। वही अल्लाह कल भी था और वही अल्लाह आज भी है, वही काम कल भी हो रहे थे, वही काम आज भी हो रहे हैं। अल्लाह ने रोका हुआ है। हवाएं वैसी पहले क्यों नहीं, जैसे पहले चली थी, आज क्यों नहीं चल पड़ती, अल्लाह का हुक्म नहीं। तो अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को देखता है, उसको मोहलत देता है, उसके ऊपर छोटे छोटे अजाब भेजता है, छोटे छोटे अजाब भेज रहा है ताकि इंसान समर जाए, सुधर जाए। ये जो कौमों को मुसल्लत किया जाता है, दूसरी कौमों को आपके ऊपर आके सर पे बिठा दिया जाता है, ये सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी इन पर लोगों को मुसल्लत रखा जाएगा जो इन्हें बुरी तरह से अजाब देते रहेंगे, ये भी इसका मतलब अल्लाह का अजाब होता है। इमाम अहमद नकल करते हैं वलीद बिन मुस्लिम से कि जब जजीरा कब्रस में मुसलमानों ने फतह उस इलाके को किया और वहां के लोग एक दूसरे से जुदा कर दिए गए, जुदा होते वक्त अजीज और अकारिब एक दूसरे से गले लगते थे और रोते थे, तो लोगों ने देखा अबू जर अलहदा अकेले बैठे रो रहे हैं। जब उनसे पूछा गया आज आप क्यों रो रहे हैं, हालांकि अल्लाह ने दीन इस्लाम को और मुसलमानों को तो फतह दी है, तो आपने जवाब दिया क्या तुम इबरत नहीं पकड़ते कि अल्लाह के सामने आजिज मखलूक इंसान जो है इसकी कोई हैसियत नहीं है। देखो ये लोग अपने मुल्क के मालिक थे, अपने दुश्मन पर गालिब थे, मगर जब इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ने दूसरों को इन पर मुसल्लत कर दिया और ये जलील हो गए, तुम इनसे इबरत नहीं ले रहे। यानी अब लोग किसी और तरफ देख रहे थे, और वो देखो जब इंसान वो ही बात है ना कि अकल वाले इबरत लेते हैं, सबक लेते हैं, उन्होंने इससे सबक लिया, देखो ये लोग तो अपने मुल्क में अच्छे भले बैठे हुए थे, इतनी तरक्कियां थी, आज देखो अल्लाह ने हमें इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया, इसका मतलब इनके कोई करतूत थे ऐसे, अल्लाह ने इनको जलील कर दिया, आज ये रोते फिर रहे हैं। हमें इबरत लेनी चाहिए इस चीज से। हम जब देखते हैं चीजों को, अपने मसाइल को, अपने चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे वो कत्लो गारत है, लूट खसूट है, डाके पड़ रहे हैं, ये तो हम बस कहते हैं देखो ऐसे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हुक्मरान ऐसे करते हैं, फलाना ऐसे करता है, अमरीका की ये साजिश है, यहूदियों की वो साजिश है, हिंदुओं की ये साजिश है, फलाने की साजिश, हम अपने आप पे नहीं देखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मेरी उम्मत में गुनाह जाहिर होने लगेंगे तो अल्लाह ताला उनको अजाब में मुब्तला करेगा। वो ठीक है बात कि वैसे अजाब अगर नहीं भी हैं तो और तरह के अजाबों की शक्लें होंगी, याद रखें। हम लोग सोचते हैं कि हम अजाब में नहीं है, हम अजाब में इस वक्त, देखिये ये अजाब की शक्लें हैं ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जब आदमी गुनाह करता है तो उस गुनाह की वजह से वो रिस्क से महरूम हो जाता है, रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। तो ये देखें कि ये रिस्क से महरूम होना भी उसके गुनाह का नतीजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जब मेरी उम्मत में गुनाह जाहिर होने लगेंगे तो अल्लाह ताला उनको अजाब में मुब्तला करेगा। और उम्मे सलमा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह क्या उस वक्त नेक लोग नहीं होंगे, यानी उसको कौमों में नेक लोग भी तो होंगे। फरमाया होंगे, अर्ज किया, फिर उनके साथ क्या सलूक होगा? आपने फरमाया वो भी इस मुसीबत में मुब्तला होंगे जिसमें दूसरे लोग मुब्तला होंगे, फिर वो अल्लाह की मगफरत और रहमत की तरफ चले जाएंगे। यानी फिर अल्लाह ताला उन मुसीबतों को ऐसे उनको तो उनकी तो बख्शिश कर देगा, मगर दूसरे लोगों के ऊपर ये एक अजाब की सूरत है। अब जाहिर है जब कोई ऐसी सूरत हाल किसी माशरे के अंदर होगी तो नेक लोग भी उसके अंदर पिसेंगे। अब नेक लोगों के लिए ये गुनाह धुलने का जरिया बन जाएगा, लेकिन दूसरे लोगों के लिए तो ये एक अजाब ही है। एक और हदीस में आता है कि जब किसी बस्ती में जिनाकारी हो और सूदखोरी आम हो जाए तो अल्लाह ताला इसकी हलाकत का हुक्म दे देते हैं। फिर फरमाया जब लोग अपने इल्म का इजहार करने लगे, अमल को जाया कर दें, अमल ना करें सिर्फ इल्म के ऊपर शेखियां मारते रहें, और जुबान से हमदर्दी और दिल में बुग्ज रखें, लोगों के सामने तो बड़े प्यारे मीठे ऐसे कि बस जैसे इनसे ज्यादा कोई अच्छा है ही नहीं, और आपका हमदर्द नहीं, दिल में बुग्ज पाले में आप कमर फेरते हैं और वो आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। किस कदर घटिया ये बात है। जब लोग ऐसे होने लगेंगे और कतह रहमी करने लगेंगे तब अल्लाह ताला इन पर लानत का नजूल करेगा और इन्हें अंधा बहरा कर देगा। और देखो अंधे बहरे हुए, कोई अकल कुछ समझ ही नहीं आती, बिल्कुल अंधे बहरे, वाकई अंधे बहरे हो गए। अल्लाह की रहमत उठ चुकी है, सामने नजर आने वाली चीजों से भी अंधे बहरे सबक नहीं लेते, कोई सबक नहीं लिया जा रहा। फिर फरमाया जब किसी फोहश अमर को लोग खुल्लम खुल्ला करने लगते हैं तो अल्लाह ताला इन्हें ताऊन और दर्द की बीमारियों में मुब्तला कर देता है। पहले जमाने में ताऊन था, आज डिफरेंट बीमारियां, कोई पता नहीं जिन बीमारियों के 100 साल पहले हमारे अबाउज दादे नाम भी नहीं सुने थे, आज वो ऐसे आम है जैसे कि आप खांसी नजला जुकाम कह रहे हैं। फोहश अमर इतने खुल्लम खुल्ला है कि लोग अपनी अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी में बस कहना भी नहीं चाहती, कि ऐसी मैरिजेस को अपनी इश्तिहार बना के उन सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि हम लड़का लड़के से शादी कर रहा है। तो फरमाया ऐसी बीमारियों में वो मुब्तला होंगे कि उनसे पहले लोगों में कभी नमूदार ना हुई थी, और जब कोई नाप तोल में कमी बेशी करता है तो अल्लाह ताला उनके ऊपर कहत जुल्म और हाकिमों की मुसीबत में उनको मुब्तला कर देता है। अब बताएं ये महंगाई क्या होती है, देखिए कमी हो जाती है ना चीजों की। जब कोई कौम अपने माल की जकात अदा नहीं करती तो अल्लाह ताला बाराने रहमत से महरूम कर देता, बारिशें नहीं होती। अगर दूसरे हैवानात ना रोए जमीन पर होते तो उन पर कभी भी ना बारिश होती। जब कोई कौम अहद शिकनी करती है तो अल्लाह ताला इनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर देता, वो उनके हाथ से सब कुछ छीन लेते हैं। और जब उस कौम के आइम्मा कराम किताबुल्लाह के मुताबिक अमल नहीं करते तो अल्लाह ताला इन पर दुश्मनों का खौफ गालिब कर देता है, हर वक्त खौफ ज़दा रहते हैं, आए अब ये हो जाए, आए अब वो हो जाए। देखें ये सारी क्या है, ये सब सिर्फ गुनाहों का नतीजा है। एक गुनाह जब इंसान करता है तो उसके ऊपर किस किस तरफ से मुसीबतें आती हैं और वो मुसीबतों के सबब किधर ढूंढ रहा होता है। बुखारी में कि अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अनस बिन मालिक फरमाते हैं, वो फरमाते थे कि तुम लोग ऐसे अमाल करते हो कि जो तुम्हारी नजरों में बाल से भी ज्यादा बारीक है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम उनको हलाक करने वाले अमाल में शुमार करते थे। हमारे लिए यानी वो इतने बड़े अमल होते थे, इतने बड़े गुनाह होते थे, आज तुम उनको कुछ समझते ही नहीं हो, बाल से भी ज्यादा बारीक समझते हो कि ये कौन है, ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है। बाज लोग कहते ना नहीं ये छोटा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं है ना, ये बताए बड़ा तो नहीं है ना भाई, ये तो तुम देखो जैसे वो इमाम औज़ाई फरमाते हैं कि ये मत ख्याल करो कि गुनाह छोटा है, बल्कि इस जात का ख्याल करो जिसकी तुम नाफरमानी कर रहे हो। गुनाह छोटा है या बड़ा है ये ना देखो, वो जात कितनी बड़ी है ये देखो जिसकी नाफरमानी हो रही। तो इंसान इस चीज को सोचे कि ये जब इंसान गुनाह करता है ना कि अगले दिन अगर नहीं उसके ऊपर कोई फौरी पकड़ आई, कोई फौरी उसका असर नहीं उसको हुआ, हर चीज ठीक ठाक चल रही, तो वो सोचता है कि शायद कुछ भी नहीं होता असल में, ऐसे ही मैं तो डर गई। हालांकि ये नहीं है, इंसान के ऊपर गुनाहों के जो नतीजे हैं वो मुद्दतों बाद भी जाहिर होते हैं, जबकि वो गुनाह को भूल चुका होता है, वो सोचता भी नहीं है कि मैंने फलां के साथ फलाने वक्त में ये ज्यादती की थी, आज ये उसका असर मेरी औलाद के अंदर आ रहा है, मैंने फलां औरत के साथ ये जुल्म किया था, आज ये उसका असर मैं देख रहा हूं। अल्लाह अकबर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, के इंसान भूल जाता है, अल्लाह नहीं भूलता। मेरे गुनाहों के ये असरात होते हैं कि उस कि जिंदगी से इंसान की बरकत खत्म हो जाती है, रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है, उम्र में बरकत खत्म हो जाती है, इल्म में बरकत खत्म हो जाती है, इताअत और नेकी की बरकत छिन जाती है, और किसी गुनाह की फौरी सजा ही होती है। इंसान नेकी करते करते उसे महरूम हो जाता है। नेकी को कर रहा था, अब इंसान दूसरे को इल्जाम दे, आपने मेरे से ये मौका छीन लिया नेकी का। भाई आप दूसरे को कहने से पहले अपना देखें कि मैंने कोई गुनाह ऐसा किया जिसकी वजह से मैं महरूम हूं। अपने गिरेबान में झांके बजाय दूसरों को इल्जाम देने के, तुमने मेरे से ये मौका छीन लिया, तुमने मेरे से वो मौका छीन लिया, इसने मेरे से ये नहीं मुझे करने दिया, इसने मेरे से ये नहीं कराया। भाई दूसरे का नहीं कसूर है, आप अपने आप को देखें कि क्यों आपसे कोई नेकी का मौका छीन गया, क्यों आप महरूम हुए इस नेकी से। ये भी गुनाह की सजा होती है। देख लें आप जिंदगियों में जिनकी बरकत होती है, वो सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों की जब वाकयात सुनते हैं तो हैरत होती है कि भाई 40-50 साल की उम्र में इन्होंने इतना काम कर लिया इन्होंने। और बाजी ऐसे देखें 90-90 साल के, 80-90 साल के हो जाते हैं, देखें तो सही उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता, बेबरकती जिंदगी, इसको कहते हैं बरकत नहीं थी, मट्टी लेके मट्टी में चले गए। और बाज 40-50 साल की उम्र में आखरत के लिहाज से हीरे कमा के चले जाते हैं। तो ये गुनाहों की नहूसत है, मनहूसियत, दूसरों में नहीं तलाश करें कि दिन मनहूस है, फलाने का चेहरा मनहूस है, फलाने बंदा मनहूस है, फलां बात उसने मनहूस कर दी। मनहूस नहूसत गुनाहों की होती है। इसीलिए जब कोई मुसीबत पड़े तो बजाय इसके कि हम अपने घरों में लोगों को बुला के और उनको कहें कि आप ये पढ़ना शुरू कर दें, कुरान हानियां करा रहे हैं, आयत करीमा करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम कितनी फिर कोशिश करते हैं, हम अपने गुनाहों की तरफ उस वक्त देखें, हम कहें कि मेरे से क्या गलती हुई है, मैं अपने ऊपर देखूं, मैं इस मुसीबत में क्यों मुब्तला हूं। तो इसलिए इंसान को हमेशा अपने आमाल के ऊपर नजर रखनी चाहिए। कहीं पे भी कोई तंगी आती है, चाहे रिस्क से महरूमी होती है, चाहे इंसान तंगदस्ती में महसूस करता है, या दिल पे जो वहशत होती है ना, बाज दफा इंसान कहता है कि दिल पे एक वहशत सी हर वक्त महसूस रहती है, तब भी देखें कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक कितना है, और कहीं मैं गुनाहों में तो नहीं पड़ी हुई, कोई मेरा ऐसा गुनाह है जिसको मैं छोड़ दूं जो जिसकी वजह से ये वहशत हो रही है। तो वहशत भी गुनाहों की नहूसत की वजह से होती है। अगर किसी को हम कहें कि अपनी इस्तगफार करें, अब वो कहते हैं लो हमने को गुनाह किया क्या, यानी हम इसको भी बहुत अपनी अना का मसला बना लेते हैं कि आपने हमें को गुनाहगार समझ लिया, हम कोई गुनाह करते हैं, यानी हम तो सारे पाक साफ हैं, बिल्कुल पायस हैं। ऐसा नहीं होता। इंसान हर एक खताकार है, हर एक इंसान से गुनाह होते हैं, कोई इंसान गुनाहों से पाक नहीं, सिवाय अंबियाए कराम थे जिनके ऊपर अल्लाह ताला की खास रहमत होती है और हिफाजत होती है। बाकी कोई इंसान ऐसा नहीं जो कहे कि मैं तो बिल्कुल पाक साफ। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब गुनाहों के बायस तुझे इस तरह की वहशत सताए कि इंसान वहशत होती है ना, तो गुनाहों को छोड़ दे और अल्लाह से ताल्लुक कायम कर, अल्लाह से करीब हो। ये इंसान इन चीजों के ऊपर गौर करें, और ये किसी के लिए नहीं होता कि कोई बताए या कोई कहे, ये खुद हमें अपने आप को सबने जज करना। जब इन कौमों के ऊपर ऐसे अजाब आए गुनाहों की वजह से, तो क्या हम बिल्कुल पारसा हैं कि हमें तो बिल्कुल कुछ छुट्टी मिली हुई है, हम जो मर्जी करते रहे। जब आदम अलैहिस्सलाम के एक गुनाह के ऊपर पकड़ हो गई थी, तो फिर क्या बाकी सारे बिल्कुल सही हैं? और याद रखें, एक गुनाह दूसरे गुनाह का बीज बोता है। एक इंसान गुनाह करता है तो दूसरे गुनाह का दरवाजा खुल जाता है, उसका सबब बन जाता है वो। नेकी का जैसे होता है ना, नेकी आप एक करते हैं तो एक और नेकी का दरवाजा खुल जाता है, इसी तरह गुनाह करने के ऊपर और गुनाहों के दरवाजे खुलने लगते हैं, और गुनाह होने लगते हैं उससे, जब वो एक गुनाह करता है। आप देख लेना, आप एक गलत मजलिस में चले जाते, वहां से कोई और चीज पता चली, फिर वहां पहुंच गए, फिर वहां से किसी और चीज के अंदर मुबतला हो गए। इस तरह से गुनाह भी लीड करते हैं और बुराइयों की तरफ। अमा कान अल्लाह लियज़लिमहुम, पर ये मत सोचना कि हाय बेचारे, इतने इनके ऊपर पत्थरों की बारिश हो गई, इनके ऊपर ऐसा हो गया, बेचारे ये तो थे, तो इनके ऊपर इतना बड़ा अजाब आया, ये तो बहुत बड़ा अजाब है, अल्लाह ने इनके ऊपर जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ये अपने ऊपर खुद जुल्म करने वाले थे, इन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया। कैसे? ये गुनाह करके। तो ये जो चीज है कि किसी कौम के ऊपर जो अजाब आया तो उनके कसूर थे। आज भी इंसान अगर किसी नेमत से महरूम हो जाता है ना, कोई नेमत छिन जाती है जिंदगी में, तो लोगों के कसूर ना ढूंढे, अपना कसूर देखें कि मेरा कसूर कहाँ है। लोगों को ब्लेम ना करें कि फलाने किया फलाने किया, वो नहीं, अपनी चीज को अपने आप के ऊपर देखें। तो अफराद हैं या कौमें हैं, जुल्म की वजह से वो अजाबों में मुब्तला होती हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला गुनाहों से महफूज रखे है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम गुनाहों को छोड़ दें। याद रखें हदीस में आता, अल्लाह जालिम को चंद रोज की तो मोहलत देता है, चंद दुनिया की जिंदगी की तो मोहलत देता है, मगर फिर जब पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। इसलिए इस चीज से डरना चाहिए कि अल्लाह की पकड़ आ जाए इससे पहले मैं गुनाह छोड़ दूं। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए कि उस वक्त छोड़ूंगी, या फलाना ओकेजन हो जाए तो फिर छोड़ूंगी, या फलां मुझे कहेगा तो फिर छोड़ूंगी, या फलां राजी हो जाएगा तो फिर छोड़ूंगी। नहीं, ये सोचें कि ये मेरे ऊपर मुसीबत लाएंगे इसलिए मैंने इसको छोड़ना, इसकी वजह से अजाब है आखरत का भी और दुनिया में भी मुसीबतें। मثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء, इन सब ने भी देखे दुनिया के सहारों को सहारा समझा और सोचा कि हमारा कुछ नहीं जाएगा, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सब के सहारे खत्म हो गए। अल्लाह ताला ने मिसाल दी उन सहारों की जो अल्लाह के सिवा लोग बनाते हैं। मثل الذين اتخذوا, मिसाल उन लोगों की है जिन्होंने बना लिए मिन दून अल्लाह, अल्लाह के सिवा औलिया, सरपरस्त प्रोटेक्टर हैं, या उनके जो ऐसे लोग जो उनको वो समझते हैं कि हम इनके ऊपर सहारा ले लेंगे, ये हमारे मददगार होंगे, ये हमें बचाएंगे, ये हमारे हालात संवार देंगे, ये सब औलिया में आ जाते हैं। तो उन्होंने अल्लाह के सिवा इनको जब औलिया बना लिया तो इनकी मिसाल कैसी है, का मसल अनकबूत, इनकी मिसाल अनकबूत की जैसी है, मकड़ी की जैसी है, कि मकड़ी क्या करती है, इत्तखजत बैतन, बना लिया उसने एक घर, उसने बना लिया घर। और घर किस लिए बनाया जाता है, घर में इंसान के लिए प्रोटेक्शन होती है, घर में इंसान के लिए बचाव होता है, पनाह ले लेता है इंसान अपने घर में आके धूप से, सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, दुश्मन से, हर तरह से, ठीक है। तो घर एक प्रोटेक्शन की जगह है, लेकिन इसका घर कैसा है, हालांकि इसका व इन औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, इसने घर तो बना लिया लेकिन बेशक सबसे कमजोर घरों में घर जो है ना वो मकड़ी का घर है। यानी इसने घर बनाया भी तो कैसा बनाया, जो सबसे कमजोर घर है, जितने घर है ना उनमें सबसे कमजोर घर इसका है। आपने देखा है कभी मकड़ी के जाले को आप एक हाथ लगाएं वो यानी खत्म हो जाता, वो यानी उसके अंदर जरा भी पायदारी नहीं है, पायदार नहीं है, इस कदर कमजोर है कि ना उसको मकड़ी को हवा से बचा सकता है, ना धूप से बचा सकता है, ना बारिश से बचा सकता है, ना किसी और ऐसी चीज से बचा सकता है, सर्दी गर्मी से बचा सकता है, ऐसा घर है। इसका मतलब है, आप सोचें, लौकानु यालमून, काश कि ये होते इल्म रखते, इनको समझ आ जाती ये बात कि अल्लाह को छोड़ के जब दूसरों को सहारा बनाया जाता है ना तो वो सहारे भी इतने ही कमजोर हैं, वो सहारे भी किसी चीज से बचा नहीं सकते, कोई नफा नुकसान से नफा दे नहीं सकते, नुकसान से बचा नहीं सकते, वो रिस्क दे नहीं सकते, वो कहीं इंसान की किसी किस्म की भी कोई मदद नहीं कर सकते, वो सबसे कमजोर घर है। तुमने पकड़ा भी तो किसको सहारा पकड़ा, जो सबसे कमजोर है, जैसे मकड़ी को जाले का सहारा कुछ काम नहीं देता, तो अल्लाह के सिवा जिनको भी औलिया बनाया वो कुछ काम नहीं देंगे। जिसके लिए अब इंसान सोचता है ना कि हाँ ये मेरा सहारा बन जाएगा, ये मेरा सहारा है, ये ही कल मेरे काम आना है, इसने ये औलिया है, ये ही मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ये ही मेरी बिगड़ी बनाएगा, ये ही मेरी मदद करेगा। तो फरमा दिया कि नहीं, कुछ भी अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़ के कुछ भी ऐसा नहीं है जो सहारा बन सकता। इन कौमों ने भी देखो गैर अल्लाह को सहारा बनाया था, किसी ने इमारतों को, किसी ने अपनी तरक्की को। कौमे शोएब तो बड़ी तरक्की याफ्ता थी, कौमे आद तो कहती थी हम जैसे कोई है ही नहीं, उन्होंने अपने कद काठ को समझा इतनी बड़ी हम चीज है। कोई ने, किसी ने अपने जत्थे को, किसी ने अपनी हुकूमत को, किसी ने अपनी दौलत को, किसी ने किसी चीज को, किसी ने किसी चीज को औलिया बनाया था। मगर क्या हुआ उन सब का, क्या उनमें से कोई औलिया उनके काम आया? जब अजाब आए किसने उनको बचाया? तो इससे तुम सीखते नहीं हो, इससे तुम्हें समझ नहीं आती इन मिसालों से कि ये सहारे कोई सहारे नहीं है, ये सहारे ऐसे नहीं है जो तुम्हें बचा सके। आज इंसानों में किन सहारों के ऊपर इंसान का भरोसा होता है सबसे ज्यादा? यही चीजें होती है ना, माल है, ओहदे हैं, कोई बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ हम कॉन्टेक्ट्स रखते हैं, उनके साथ दोस्तियां बनाना चाहते हैं, फेमस हैं या नाम या मालदार हैं, या उनके पास कोई वजीर है, कोई मुशीर है, कोई अमीर है, कोई फलाना बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो फलाना ये है। भाई उनके साथ किस लिए करते? भाई कल को हमें कोई जरूरत पड़े ना तो फिर इनको कम अज कम कॉल करेंगे तो ये आ तो जाएंगे, हमारे काम तो आ जाएंगे। ये मेरे पास माल होगा तो कल को काम तो आएगा ना, मेरी फलां के साथ दोस्ती होगी तो ये ताल्लुकात काम आएंगे, ये मेरा शौहर, ये मेरा बेटा, ये मेरा सहारा बनेगा, ये मेरे काम आएगा। कितने कमजोर सहारे बनाए, ये तो बैतुल अनकबूत की तरह है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इतने ही कमजोर है। वो सहारों को तो खुद सहारे चाहिए, वो तो खुद भी स्टेबल नहीं होते। ये तुमने किनको सहारा बनाया? इंसान कहता है ये मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, ये मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेगा, ये बस मेरे साथ होगा ना तो हर चीज सही है। ऐसा नहीं होता, ये मकड़ी के जाले हैं बस और कुछ नहीं है, ये इतनी कमजोर है। मकड़ी के जाले के ऊपर कोई सहारा ले ले, हंसी आएगी। कभी आपने किसी को सुना वो जी वो गिरने लगा था उसने मकड़ी के जाले पे सहारा ले लिया? कभी सुना आपने ये बात? नहीं सुनी ना, इसलिए कि मकड़ी के जाले पे कोई भी सहारे नहीं लिया करता, कोई उनको वली नहीं बनाया करता। इस मिसाल से समझो क्या ये भी ऐसे ही सहारे हैं? क्या तुम इनके ऊपर अपने तकिया करोगे? क्या तुम इनको थामोगे? क्या ये तुम्हें बचा सकते हैं फिर जो मकड़ी के घर की तरह? अल्लाह अकबर, कितनी जबरदस्त मिसाल है यहाँ पे, कितनी जबरदस्त मिसाल है। जिसको इंसान अल्लाह को छोड़ के, बुत ठीक है आज तो बुत है नहीं, हम क्या कहें, अब उनके लिए तो बुत थे, वो बुतों को सहारा बनाते थे, उनको औलिया बनाते थे, उनको इन्होंने सब कुछ समझ लिया था, ठीक है उनके लिए तो वो थे। आज मुझे ये बताएं ना, हमने भी तो गैरुल्लाह के सहारे पकड़े होते हैं, अल्लाह का सहारा नहीं, अल्लाह को नहीं मददगार समझते, अल्लाह पे नहीं भरोसा होता, उनके ऊपर होता है। और ये तो बस एक जाला है, ये तो किसी का बोझ नहीं उठा सकता, ये किसी का सहारा नहीं बन सकता। और ये जाले कहाँ लगते हैं, या ये बताइए जो मकड़ी है वो अपना जाला कहाँ बनाती है, अपना घर कहाँ बनाती है? जहां पे वीराना होता है, जहां पे कोई गुजरता नहीं है, आना जाना नहीं होता, उन जगहों पे आपने देखा अक्सर जहां पे कोई रहता नहीं है जिन घरों के अंदर, वहां पे जाले लग जाते हैं। जिधर को बहुत अरसे से आपने कोई कमरे बंद किए हो, कोई घर बंद किया हो, वहां पे जाले लग जाते हैं, है ना? इसी तरह जिस दिल के अंदर अल्लाह की याद नहीं है, जिस दिल में अल्लाह की याद का गुजर नहीं है, आना जाना नहीं है, वहां पे यही जाले लगते हैं। फिर वहां पे किसी को गार्डियन बना लिया जाता है, किसी को हेल्पर बना दिया जाता है अल्लाह के सिवा, उसी के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं। यही है हमारा। बज़ाहिर ये जाला बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन ये है जाला ही। ये तुम्हें मुसीबत के वक्त में तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया ना, किसको सहारा बनाना है, चाहे दुनिया का चाहे आखरत का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसको वली बनाया था? अगर उन्होंने भी वली बनाया होता अपने बाप को, या उस माशरे को, उन लोगों को, या वहां पे कोई और चीज को, किसी भी और हस्ती को, तो कौन काम आता? अल्लाह अकबर, बड़ी खूबसूरत मिसाल है ये। अब आपने मकड़ी के जाले को देख के सोचना है कि मैं क्या इसका सहारा ले सकती हूँ, तो फिर उस उन तमाम को सोचना है जिनको हमने औलिया बनाया हुआ अल्लाह को छोड़ के, कि वो ये हैं, उनके सहारे ये हैं, तो क्या अल्लाह मेरे लिए काफी नहीं? अरे ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह को अपना वली बनाते हैं ना, फिर तो उनको कोई खौफ और गम ही नहीं होता, इसलिए कि उसका सहारा कैसा है, फकद इस्तमसका बिल उरवतिल वुस्का लन फिसामा लहा, फिर उसका सहारा वो है कि जिसने उसका सहारा पकड़ा उसने उस कड़े को थाम लिया, एक मजबूत कड़े को जिसको कभी नहीं टूटना। मकड़ी का जाला तो अपने आप को भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, और ये जो अल्लाह को सहारा बनाएगा उसने इतना मजबूत कड़ा पकड़ लिया जो कभी नहीं टूटेगा। बेशक अल्लाह जानता है जिसको वो पुकारते हैं उसके सेवा, जिस भी चीज को, बुत को या किसी और को पावर समझते हैं, किसी को पुकारने लगते हैं, किसी कब्र पे जाके उनको पुकारते हैं, किसी और को पुकारते हैं, अल्लाह को सबका पता है। जिसको अल्लाह की पहचान हो जाए ना, फिर वो उसको छोड़ के इन कमजोर सहारों को कभी भी ना पकड़े, इन वेब्स को कभी भी ना पकड़े, फिर वो मुश्किल वक्त में किस तरफ जाए, फिर वो भागेगा तो किस तरफ भागेगा? मगर जिनको नहीं समझ वो इन जालों के ऊपर सहारा लेने लगते हैं। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह को पता है कि ये कौन कौन से जाले हैं, किसके दिल में लगे हुए, किसने किस जाले को थामा हुआ है। हकीम, और वो तो गालिब है, हिकमत वाला है, इस गालिब हिकमत वाले को छोड़ के फिर तुम वहां जाते हो, सहारा भी लिया तो किसका, किसी दीवार का नहीं, किसी घर का नहीं, मकड़ी के जालों को, और सारे ही मकड़ी के जाले हैं, मिन दूने ला में सब आ गए, सब एवरी। हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं वो मकड़ी के जाले जो है ना वो बुतों को कहा गया है, क्योंकि वो कुछ नहीं ना कर सकते। बाकी हाँ, जिनको हम समझते हैं वो सही सहारा है, किसी ने वालदैन को बनाया या किसी ने और किसी को, तो नहीं नहीं वो तो सही सहारा है, किसी ने अपने इल्म को, किसी ने तरक्की को अपनी, किसी ने साइंस को भी सहारा बनाया होता है, वही उसके ऊपर उसका सारा भरोसा है, और वो ही है साइंस, तो रोज चेंज होती रहती है, वो भी वैब ही है, उसका सारा अकीदा साइंस पे है। अगर कुरान साइंस पे पूरा उतरता है तो फिर कुरान ठीक है, अस्तग़फिरुल्लाह, और अगर कुरान साइंस पे नहीं पूरा उतरे तो साइंस तो ठीक है, कुरान गलत हो गया, उसको रिजेक्ट कर दिया। कहां की अकल है, वो तो वेब है, इस पे सहारा ले रहे हो, वो तो कल को खुद नहीं खड़ी होगी, कल को कोई और थ्योरी लेकर आ जाएगी। मादी तरक्की ये सहारा है, अस्तग़फिरुल्लाह, आज तरक्की है, कल को उन्हीं को हम देखते हैं कि कल को जवाल है। अगर किसी इंसान को बनाया वो आज है तो कल दुनिया में ही वो साथ छोड़ जाते हैं, और नहीं है तो मौत आ जाएगी, साथ खत्म हो गया, वो सहारा है तुम्हारा। किसको सहारा बनाओगे, खुद सोचो, सब एक ही लेवल पे अल्लाह ताला ने कर दिए। ये नहीं फरमाया कि ये वाले जो औलिया है ना ये तो थोड़े मजबूत है, ये तो दीवारों की तरह है, फिर ये जो है ये वो मेज की तरह है, ये कुर्सी की तरह है, और ये मकड़े की जाले की तरह, ऐसे नहीं फरमाया, सब के सब एक ही जगह ला खड़े किए, सब के सब मकड़ी के जाले हैं, सब के सब, اللہ کے سوا جو بھی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی جادوگر ہے، کوئی نجومی ہے، کوئی فلاں ہے، سب مکڑی کے جال۔ اللہ اکبر۔ بظاہر دیکھنے میں ویسے نا یہ جو بیت العنکبوت ہے، آپ کو یہ بتاؤں، یہ سٹیل کے تار سے زیادہ مضبوط اس کے تار ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اتنا کمزور ہو جاتا، سہارا لیتے ہیں تو ٹوٹ کے گر جاتے ہیں۔ سہارا کیا لیتے ہیں، ہم ایسے ہی ہاتھ ہی لگائیں تو ہاتھوں کو چپٹ جاتا۔ بظاہر مضبوط نظر آنے والا کیا ہے، یہ بھی سہارے بظاہر بہت مضبوط نظر آتے ہیں، اور ہیں کچھ نہیں ان کی حقیقت۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ ہیں مثالیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر ان کو سمجھتے نہیں ہیں ان مثالوں کو، مگر عالم لوگ، علم والے۔ جس کون سے علم والے؟ جس کو علم ہو دین کا، جس کو علم ہو شریعت کا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ صرف پی ایچ ڈی کر کے ڈگریاں ہاتھ میں لے کے سمجھ لینا کہ میں بڑا علم والا ہوں، وہ نہیں ہے یہاں پہ مراد۔ تو جس کا علم پختہ ہو، جو غور و فکر کرتا ہو، تو ان کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، ان کو یہ مثالیں سمجھ آتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، صحابہ یا بعد میں تابعین یا تبا تابعین کیسے سوچتے تھے۔ عمر بن عاص تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں سمجھی ہیں۔ اس طرح سے وہ سیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، 1000 مثالیں سیکھی سمجھی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کیسا تھا کہ ہم مثالوں کو سمجھیں، سمجھ آنی چاہیے ہمیں۔ یہ نہیں کہ چلو کوئی نہیں بھی سمجھ آئی تو کوئی ایسی کیا بات ہے، ہم نے کون سا کہیں پڑھانا ہے، گزر گئے اوپر سے۔ حضرت عامر بن مرہ فرماتے ہیں کہ کلام اللہ کی جو آیت میری تلاوت میں آئے اور اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا تفصیلی مطلب میری سمجھ میں نہ آئے تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، اور میں ڈرنے لگتا ہوں کہ کہیں اللہ کے نزدیک میری گنتی جاہلوں میں تو نہیں ہو گئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن سوائے عالموں کے کوئی اور سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ تو نہیں کہ میرا یعنی شمار جاہلوں میں ہے، جس کو نہیں سمجھ آئی سمجھ لے وہ جاہل ہے۔ تو ان کو سمجھ آنا ضروری ہے، تبھی کوئی عالم ہے، اور سمجھ اسی کو آئے گی جو کہ واقعی ان کے اندر غور و فکر کرے گا، جو ان کو سمجھنا چاہے گا۔ جابر فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اللہ کے کلام میں غور و فکر کرے اور سمجھنے کے بعد اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانی سے بچے، وہ ہے عالم۔ صرف الفاظ کا علم لے لینا وہ بھی عالم نہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ لوگ بس تھوڑا سا 2-4 سال 6 سال پڑھ کے سوچتے ہیں ہم عالم بن گئے، پھر لوگوں کو بھی کہتے ہیں میں عالمہ ہوں، بڑے فخر سے کہتے ہیں، عالم وہ نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی ہے کہ عالم وہ ہے کہ جو سمجھنے کے بعد اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانی سے بچے۔ وہ واقعی کیا ہم عالم بن گئے؟ 10 سال بھی اس کو پڑھ لیں کیا عالم بن گئے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ اپنے لیے تو میں نہیں کہوں گی، یہ مجھے اپنے لیے تو نہیں لگتا کہ یہ فخر سے کہنا کہ ہم عالم ہیں، کیسے کہہ لیتے ہیں؟ واللہ عالم۔ تو قرآن اور حدیث صرف الفاظ سمجھ لینا، رٹ لینا، مطلب جان لینا، یہ اللہ کے ہاں کوئی عالم نہیں ہو جاتا جب تک وہ اس کے اوپر عمل نہ کرنے لگ جائے، اس میں غور و فکر کی عادت نہ ڈالے اور اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال نہ لے۔ کیا ہم نے بھی کبھی سوچا کہ ہمیں مثالیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارا شمار جاہلوں میں تو نہیں اللہ کے ہاں؟ تو جو عالم ہے نا ان کو سمجھ آئیے، جو واقعی اس کے اوپر عمل کے لیے کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، کیسے؟ بالحق، ساتھ حق کے۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ با مقصد، کسی مقصد سے پیدا کیا۔ یہاں پہ کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے ایک آدمی تھا، اس نے ایک کیڑے کو دیکھا، बहुत ही अजीब सी शक्ल का था। उसने कहा इतना गंदा कीड़ा और ऐसा कीड़ा, इसकी जरूरत क्या थी इस दुनिया में, पता नहीं क्यों ये है। कुछ दिन बाद उसको एक फोड़ा निकल आया और वो हकीम के पास गया तो उसने कहा वो ही कीड़ा लेकर आओ। वो कीड़ा लाया गया, उसको पीस के उसका सफूब बना के और फिर वो उसके ऊपर लगाया गया। तो फिर उसको समझ आई इस दुनिया में कोई चीज बेमकसद नहीं है, यहाँ पे हर चीज के कोई मकसद है। कभी आपको कोई चीज नजर आए ना कि आप सोचे ये क्यों बना दी, ये तो बेकार है बिल्कुल, ये तो होनी नहीं चाहिए थी, आपको नहीं पता इसका क्या मकसद है। कोई चीज अपने देखने में सामने क्या लगती है लेकिन उसके कहां कहां तक असरात है और क्या क्या उसे चेंजेस आती है या वो किस चीज की खुराक बनता है वो तो हमें कुछ भी नहीं पता। हम अपने थोड़े से नॉलेज से कह देते हैं इसकी तो जरूरत नहीं थी। हम तो कोई भी चीज मौसम बदलते देखते ना, इस मौसम की क्या जरूरत थी, इतनी सर्दी हो गई बर्फ हो रही है, इसकी क्या, मुझे तो समझ नहीं आती कि इसका क्या है पर्पस। हमें अगर नहीं समझ आती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेमकसद है। हर चीज बामकसद है, हर चीज का कोई फायदा है। इसी तरह इंसान भी हक के साथ पैदा हुआ है, वो भी ऐसे ही बेकार घूमने नहीं आया यहाँ पे, सैर करने इस जमीन पे, तफरी करने, मजे करने, एंजॉयमेंट के लिए नहीं आया। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिल्मुमिनीन, इसमें एक निशानी है ईमान लाने वालों के लिए। वो देखें इस निशानी को कैसे ये दुनिया बामकसद अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर ये निशानी है ना मेरे लिए कि मुझे भी बामकसद बनाया, तो मेरा मकसद क्या है फिर। अल्लाह ताला हमें इन आया की सही समझ अता फरमाए, इनका फहम अता फरमाए। अल्लाह ताला जितना हमने पढ़ा है इसको कबूल फरमा लेना और अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा देना। जो एक एक चीज में मकसद है, हमें मकसद समझ नहीं आता लेकिन अल्लाह हम फिर भी ये कहते हैं तूने हर चीज बा मकसद बनाई, तेरा कोई काम आबस नहीं है या अल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين